ये एहसान विलायत और रूहानियत की एक कैफियत है। एहसान का ये दर्जा शरीयत के रास्ते से आता है और इसलिए ज़रूरी है कि शरीयत और तरीक़त दोनों को इंतहाई खूबसूरती से अदा किया जाए। देखिए अब यहाँ थोड़ा सा समझिएगा केयरफुल होके, बहुत सारे लोग भटक जाते हैं एहसान के दर्जों पे पहुँचते पहुँचते। आपको तसव्वुफ़ के अंदर ये नाम बहुत मिलेगा, लेकिन तरीके जो इख्तियार किए जाते हैं ना वो गैर शरई हो जाते हैं बाज़ औक़ात। थोड़ा सा इसको पढ़ें आपको खुद ही बात समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पर एक शख्स ने बेतवज्जही से आदत के तौर पर यानी एज अ रूटीन नमाज पढ़ी। है किसी की आदत, अक्सर ही ऐसे आदत है नमाज की पढ़ते हैं। फजर की नमाज में क्या कुर्ब मिला? मैं आपसे पूछूं ना फजर में कौन सी सूरत पढ़ी थी, तो ये भी नहीं याद होगा। बाद तो जान मस्त तय करके आप उठते हैं और कोई पूछे कौन सी सूरतें पढ़ी, आपको कोई नहीं याद होती। वो एक रील चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान कुल वल्लाहु अहद अल्लाह समझ जाए रब्बिक फिरली वली वालिदैया खत्म, तवज्जो नहीं होती। अब एक शख्स अगर रूटीन के तौर पे नमाज पढ़े, इसने तहारत ठीक कर ली, वुजू भी ठीक किया, नमाज में खड़ा हुआ, सूरत फातिहा के अल्फाज भी अदा कर लिए, रुकू सजूद भी ठीक अदा किए और नमाज मामूल के मुताबिक अदा की, लेकिन एक दूसरा शख्स है जो तहारत करते हुए भी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे है, यानी वुजू करते हुए बंदा क्या सोचे कि अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। आप कहीं जाते हैं तो आप तैयार होते हैं, आपका मूड चेंज होता है। शादी में जाने का अगर मज़ा है तो शादी के लिए तैयार होने का भी मज़ा है ना। आप तसव्वुर में सोचते हैं अच्छा मैं ये कपड़े पहनूंगी, अच्छा मैं ये मैचिंग पहनूंगी, अच्छा मैं ऐसी लगूंगी, आपको मज़ा आता है ना सोच के। बास कहते हैं ना कुछ कामों में मज़ा आता है, कुछ कामों की तैयारी में मज़ा आता है। आप खाना पकाते हैं, किसी के लिए खाना पकाने में आपको कितना मज़ा आ रहा होता है ये उस खाने वाले को भी नहीं पता कि जो खा रहा होता है, फ़र्क होता है ना। तो जब तवज्जो होती है नमाज में वुजू के दौरान अल्लाह की तरफ, तो आप क्या सोच रहे होते हैं, अच्छा अभी थोड़ी देर में मुलाकात होगी। वुजू करते वक्त एक एक उज़्व धोते वक्त अल्लाह से इसकी रहमत और बख्शिश की भीख मांग रहा है, अल्लाह के सामने गिड़गड़ा रहा है कि अल्लाह उज़्व को धोना मेरे बस में था लेकिन असल तहारत देने वाला सिर्फ तू है। यानी मैं तो हाथ ही धो सकता हूँ ना, अपने दिल तो नहीं धो सकता। कुरान में भी ये मज़कूर है कि मैं जिसको चाहता हूँ तहारत अता कर देता हूँ। ऐ अल्लाह मैं तो सिर्फ जतन ही कर सकता हूँ, यानी कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो ऊपर ऊपर ही पानी डाल सकता हूँ लेकिन दिल की स्याही को धो डालना तो अल्लाह तेरा ही काम है। सिर्फ तहारत करने के बाद नमाज की नीयत करके खड़ा हो गया और दिल में ये आयत है कि इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ध हनीफ़ा हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन। ऐ अल्लाह मैंने अपना रुख सीधा तेरी तरफ कर लिया है, अब दाएं बाएं मुझे किसी की ज़रूरत नहीं और मैं मुशरिकीन में से नहीं। सूरत अलनाम आयत 79 है। फ़ारसी में भी इसको कहते हैं कि यके ख्वाहम यके बीनम यके जो यम यके दानम, मतलब वही इसका मतलब है जो ऊपर है कि जब एक रब की तरफ तवज्जो हो गई तो फिर दूसरों की क्या ज़रूरत है। इसके बाद इसने नमाज शुरू की और एक एक आयत के मानी समझ कर अल्लाह की मोहब्बत में डूब के खुशू व खुदू से नमाज अदा की। ऐसी नमाज का दर्जा पहली नमाज से कहीं बुलंद होगा। ऐसी है, आप किसी जगह जाए ना और पूरी तैयारी से जाए तो आपको उसका मज़ा और ही आता है। और कहीं आप बैठे घर में अपने ही मैले कुचैले कपड़ों में थोड़े एकदम कोई दोस्त आ गया, अरे जल्दी करो तुम्हें याद नहीं हमने जाना था, चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी, आप सब कुछ करके भी चले जाएंगे ना लेकिन आपको बैठे बैठे लगेगा तैयारी ठीक नहीं, हाय मैं जिंदगी तो पे तैयार नहीं थी, हाय मैं ऐसी नहीं, हाय वो नहीं है। तो बगैर तैयारी की नमाज भी ऐसी ही मुलाकात है। नमाज के बारे में फरमाई नहल कबीरत खाशीन, ये नमाज बहुत भारी और बोझल चीज है, हर एक से अदा नहीं होती सिवाय इन लोगों के जो खाशीन है। सूरत बकरा 250 होगी, ये नंबर गलत आयत का चेक कीजिए आप जरा। इन नहाल कबीरत खाशीन, ये बड़ी बोझल है मगर खुशू करने वालों पर, 150 के करीब होगी ये आयत। وہ لوگ جو خشوع رکھنے والے ہیں. اب خشوع کیا ہے؟ قرآن نے اس کی انتہائی خوبصورت تشریح کی ہے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, وہ لوگ جو اسی دھیان میں لگے رہتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار سے ملنا ہے. بقرہ 46, اللہ کی طرف دھیان کا لگا رہنا یہ خشوع ہے, اور اس کی مروبیت, اس کے سحر میں مبتلا ہو جانا, نماز پڑھتے ہوئے اسی دھن میں لگے رہنا کہ میں تو اللہ کا ہوں. کیسے بولیں گے اس کو عربی میں؟ انی للہ یا انا للہ, ہم تو اللہ کے, اور مجھے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وانا الیہ راجعون, اسی سے ملاقات کرنی ہے, میری آخری منزل وہی ہے, مجھے اسی کے ہاں ٹھہرنا ہے. یہاں دنیا میں تو تھوڑی دیر کے لیے اس نے میری تقرری یعنی اپوائنٹمنٹ کر دی, مجھے اپوائنٹ کر دیا, کچھ ذمہ داریاں دے دی, اس لیے میں یہاں آیا ہوں. میرا اصل گھر تو آخرت ہے, اور اللہ ہی میرا محبوب حقیقی ہے. اور دل کی یہ کیفیت بن جانا کہ گفتگو کسی سے ہو تیرا دھیان رہتا ہے, ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تکلم کا. سمجھے کہ دھیان کہیں اور ہو تو بات کریں کسی اور سے, تو بار بار ہی بات ٹوٹتی ہے, نام اس کا آ جاتا ہے. یہ ہے خشوع. اب اس خشوع کے عالم میں, اس دھیان اور دھن میں جو نماز پڑھی جائے, اس کو ہم احسان کہیں گے. یعنی کسی کام کو کرتے ہوئے صرف اس کی صورت پر ہی نہیں دھیان دیا, بلکہ اس کی حقیقت کو بھی آپ نے پا لیا. یہ احسان ولایت, تصوف اور یہ طریقت ہو گئی. معلوم ہوا کہ شریعت کو عمل کرتے ہوئے خشوع کی کیفیت کا طاری ہو جانا ہی تصوف اور احسان ہے. کیفیت تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا, رسمی کلامی نہ کریں. آپ دیکھیے کہ اب آپ نماز کی مثال تو ادھر پڑھ چکے نا, آپ ایک ہفتہ 5 نمازیں ڈیلی اس فیلنگ کے ساتھ پڑھیں, آپ صوفی بن جائیں گے. تصوف کی اصل روح کیا ہے؟ کہ شریعت کے تقاضوں میں رہتے ہوئے اللہ کی طرف دھیان ہو. آج افسوس کی بات ہے کہ لوگوں نے تصوف کو چلا کشی, جنتر منتر, لمبے چوڑے وظیفے اور ایک نہ حاصل ہونے والی چیز بنا دیا. گندے مندے بیٹھے رہو, دھن میں ہیں, مراقبے میں گئے ہیں, اور فلاں پیر کی شکل دیکھ لی تو یہ ہوگا. یعنی میں اکثر سوچتی ہوں, کبھی کسی کی کوئی چیز سامنے آتی ہے, تو سرچ میں ایک لیکچر سامنے آ گیا, کوئی ٹاپک ڈھونڈ رہی تھی, تو میں نے کہا دیکھو یہ کون ہے, کیا کہتے ہیں. بس وہ شروع تو سننا کیا ایسے ہی کہ کوئی کام کی بات ہوگی, لیکن پھر سنتی ہوئے اعوذ باللہ پڑھتی رہی پورا وقت. 20 سے 25 منٹ کا وہ لیکچر تھا, چونکہ ساتھ کچھ اور بھی کر رہی تھی, تو میں نے کہا ذرا دیکھوں تو صحیح لوگ سنتے کیا. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اس لیکچر کو سننے کے بعد, میں آپ کو بھی یہاں سنوا سکتی ہوں اگر آپ, مجھے یقین ہو کہ آپ اس کو سن کر غلط طرف نہ چل پڑے. اپنے لیکچر میں انہوں نے مثالیں دی ہوئی ہیں کہ میرا ایک دوست تھا, تو فلمیں دیکھتا تھا, گانے سنتا تھا, یہ ہے وہ ہے, تو مجھے کسی نے کہا کہ اس کو سمجھاؤ. تو میں نے اس سے کہا کہ جب تک میں خود نہیں دیکھوں گا تو میں اس کو کیسے سمجھاؤں گا یہ بری چیز ہے. تو میں اس کے ساتھ سینما چلا گیا. اچھا سینما چلا گیا, اب کہتے فلم شروع ہوئی. اب آپ سوچیے ایک درس دینے والا بندہ خود اپنی کہانی سنا رہا ہے کہ میں سینما ہال میں بیٹھا ہوں اور ساتھ یہ بھی اور وہ بھی ہے, تو ساتھ ایک بزرگ کو بھی لے گیا. تو فلم شروع ہوئی, پھر ہنستے ہیں, یعنی یہ کتنا گندا انداز کہ جس میں وہ آپ کہہ لیں کہ زوم آ نہیں پاتے. پھر فلم چلی, پھر ٹوٹے شروع ہو گئے. اب وہ ٹوٹے کیا تھے کہ گندے سین. تو پھر جو اونچی آواز سے ہم نے کہا اعوذ باللہ, لا حول ولا قوت لا حول ولا قوت, اس کو بولا یہ ہوتی ہے لا حول ولا قوت جو گناہ کو دیکھ کے کی جائے. تم بیٹھے ہو مسلح پر پڑھے لا حول ولا قوت لا حول, یہ تمہاری کوئی لاحول ہے؟ یعنی آپ امیجن کریں, اس لیکچر کے بعد نہ تو کوئی نماز پڑھے گا, نمازوں کا جو مذاق اڑایا ہوا, یہ مولوی ملا داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے لاہور کہتے ہیں, یہ کوئی لاہور ہے؟ لاہور پڑھنی ہے سینما میں جا کے پڑھو. پھر میں نے باہر جا کے اس کو کہا کہ وہ جو لوگ اچھل رہے تھے نا جس وقت, تو میرے دل کی گہرائی سے اعوذ باللہ نکلی تھی, یہ اعوذ باللہ اچھی ہوتی ہے. यानी वो लेक्चर, अब तो मैं आपको एक छोटी सी उसकी बात सुनाई है ना, कि मैं अगर वो लेक्चर कुरान पढ़ने पढ़ाने से पहले सुन चुकी होती तो मैंने तो उनको पीर मान लेना था, क्योंकि उसके बाद आपको नेकियां करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। लोग इस तरह से आपको बेअमल करते हैं। भाई दाढ़ी किधर है आपकी? कहते हैं अभी उस दर्जे पे नहीं पहुंचे एहसान के दाढ़ी रखे। ये मैं आपको वल्ला ही सही बातें बता रही हूँ जो मेरे अपने कानों ने लोगों से सुनी है। भाई आप जो कहते हैं कि आप लोग तो कुरान पढ़ पढ़ा रहे हैं, आप अमल नहीं करते, यानी किसी ने हम पे भी ये गिला किया होगा कि आपके स्टूडेंट आप पढ़ते तो हैं, अमल कोई नहीं करते, तो इनके अमल को बेकार। तो भाई आप क्या करते हैं? असल हम अमल करते हैं। भाई आपकी दाढ़ी किधर है? कहते हैं दाढ़ी का भी मुकाम ही नहीं आया मेरा। दाढ़ी रखना तो शो ऑफ है, अगर मैंने दाढ़ी रख ली तो लोगों को पता लग जाएगा कि मैं नेक हूं, तो ये तो रियाकारी होगी। तो नौज बिल अबू बकर, उमर, उस्मान सब रियाकार थे। भाई आप दाढ़ी कब रखेंगे? जब आप अंदर से तकवा के एहसान के दर्जों पे फायज हो चुके होंगे, फिर दाढ़ी रखेंगे। तो उनकी बेगम थी, तो उनसे बात हो रही थी, तो मैंने कहा ये मस्जिद में नमाज के लिए जाते हैं? तो कहेंगी मैं कहूँ तो नहीं जाते कभी। क्यों? कहते हैं मैं अगर 5 वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ने गया ना, तो लोगों में मैं नमाजी मशहूर हो जाऊंगा, तो फिर मेरे अंदर रियाकारी आ जाएगी, तो मैं घर में नमाज पढ़ता हूँ। ये अक्ल मारती है, बात समझ आई है? शरीयत को छोड़कर, सुन्नत तरीकों को छोड़कर, अब देखिए तावीलें कितनी खूबसूरत हैं कि भाई 5 वक्त मस्जिद जाऊंगा नमाजी, और अगर मेरा कारोबार ठीक नहीं है तो फिर ये तो मैं दिखावा कर रहा हूं। तो अपनी अकल को आगे करके, अल्लाह और उसके रसूल के तरीकों को पीछे करके, अगर आप सूफी क्या बन जाए, आप पीर भी बन जाए, तो आप जो बनते हैं आपका दिल करे बने। अमल देख लीजिए। मैंने कहा आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप कुरान पढ़ी हुई हैं पर आपके अंदर अमल कोई नहीं है, तो मैंने कहा आप नमाज पढ़ती हैं? कहती पढ़ती हूँ। मैंने कहा आप वक्त पे पढ़ती हैं? कहती 5 नमाजें वक्त पे पढ़ती हूँ। मैंने कहा आप तहज्जुद पढ़ती हैं? कहती पढ़ती हूँ। दो जो बात उस बीवी से मैं पूछती गई, वो हर एक में यस थी और मियाँ के हर तरफ नो था। तो मैंने कहा माजरत के साथ, मेरी नज़र में आप ज़्यादा नेक हैं बीवी, अल्लाह आपको इस्तकामत दे, आगे बढ़ाए। अमल आपका अभी भी पुख्ता है, तो इल्ज़ाम आपके ऊपर है कि आप लोग कुरान तो पढ़ते हैं लेकिन अमल कोई नहीं करते। नहीं जी, यहाँ जो औरतें कुरान पढ़ के जाती हैं वो बाद में आपको क्या पता क्या कुछ करती हैं, महफिलों में और दावतों में और गीबतें करती। तो भाई हमने तो ठेका नहीं लिया हुआ, आप सब यहाँ से निकलें, बाहर सीधा सन में जाएं, आई डोंट केयर, मेरी बला से। लेकिन ये मुझे बताया कि आपको हम यहाँ बैठ के सबक क्या देते हैं? तो याद रखिए, जिसने ये दावा कर दिया ना कि मेरे पास एक दफा आप आ गए आप तो पीर बन जाएंगे, वली बन जाएंगे, तो वो कोई बड़ा ही दावा कर सकते हैं, आम बंदा तो नहीं कर सकता। अल्लाह तो नबियों को कहते हैं कि वमा अलैना इल्लल बलाग, कह दीजिए कि आप पे पहुंचा देना काम है। इन्नक ला तहदी मन अहबबता, ए नबी आप नहीं हिदायत दे सकते। हजरत नूह अलैहि सलाम अपने बेटे को हिदायत नहीं दे सके, हजरत इब्राहिम अपने बाप को हिदायत नहीं दे सके, नबी सल्लम अपने चचा को हिदायत नहीं दे सके, अपने खानदान के लोगों को नहीं दे सके। अब बताइए कि हम उनसे कोई ज्यादा अच्छे मुबल्लिग हैं? किस मुबल्लिग में इतनी जुर्रत है? कौन उस्ताद ये दावा करके इस दुनिया के बाजार में निकले कि एक दफा मेरी बात सुन लो, मैं यकीन से कहता हूं तुम बदल जाओगे। अल्लाह की कसम, मैं तो आज तक अपने इन 15-20 सालों में एक दफा ये दावा नहीं कर सकी कि आपको बात बताऊं तो आप अमल कर लें या मैं ही कर लूं। ये अल्लाह अमल के रास्ते आपके लिए आसान करता है। एक उस्ताद बोलता है, 20 लोग सुनते हैं, उनके दिल बदल जाते हैं, 10 के बदलते हैं, 5 के नहीं बदलते। कोई पहली सीढ़ी पे कोई टस से मस नहीं होता, तो उस्ताद का क्या कसूर है? ये तो अल्लाह ताला किसी की बात में कोई तासीर डाल दे तो डाल दे, बंदे में कहां ये ताकत है कि किसी की बात सुने। तो लिहाजा ये मौजू बहुत ज्यादा गौर से समझने का, आपको बहुत सारे लोग बहकाएंगे। इतने साल से आप पढ़ रही हैं, बार आए हम आपको कुछ और सुनाते हैं। अच्छा क्या सुनाएंगे? 500 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करेंगी। शर्त एक है कि आपके पास घर में कोई ना हो, बड़ी सी तस्बीह हो, अकेली बैठ के करना है, और 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद में अपने बात नहीं करनी। चले गया कुरान, गई क्लास, गई आपकी जिम्मेदारियां, और आप बैठेंगे, आप कमरे में बैठेंगे, कहेंगे अंधेरा कर लें, कमरे में आंखें बंद करें, फिर कहें अल्लाह हो अल्लाह हो, फिर आप सोचें, फिर आप उड़ रही हैं। भाई आप ऐसे काम करें और आप लोगों को ऐसे उल्टे सीधे वजीफे से लोग कहेंगे वाकई बड़ा असर हो रहा है। मैं यकीन करिए, ये आपको जो अमल की बातें रोज आके यहाँ बताती हूँ, ये तंग करती हूँ। मैं आपको ऐसी 4-6 तस्वीरें बताऊं, मेरा नहीं ख्याल है स्कूल में जरा सी भी जगह खाली रहे, इतने लोग आ जाएंगे। पर जब मैंने खुद नहीं पढ़ा, मैं आपको वो कैसे पढ़ाऊं? मैंने नहीं सुन्नत में पढ़ा, मैंने अल्लाह के नबी को नहीं देखा। मुझे तो आपकी ज़िंदगी एक अमल वाली ज़िंदगी और एक हरकत वाली और जिहाद वाली और दुनिया में लेकिन लोगों के लिए तड़पने वाली ज़िंदगी थी। आप अपने घर में ऐसे होते थे जैसे आम इंसान है, बीवियों के सामने आप ऐसे होते थे एक के मुंह पे आटा मल रहे हैं, दूसरी दूसरे पे मल रही है, आप देख के मुस्कुरा रहे हैं। आप अपनी बीवियों के साथ घर का काम करते थे, हजरत आयशा के साथ दौड़ लगाते थे। कोई तसव्वुर कर सकते हैं आज मौलवी साहब मस्जिद के दौड़ लगाए हैं बेगम के साथ, सारे शहर में स्कैंडल फैल जाएगा, जी आज मुल्ला साहब वो देखिए इमाम साहब दौड़ लगा रहे थे। हमारा तो तसव्वुर ही एक पीरी मुरीदी का बना हुआ है। वल्लाह ही हम दीनदारों को इंसान थोड़ी समझते हैं। हम कहते वो मुस्कुरा रहे थे, वो हंस रहे थे, वो बोल रहे थे, वो होटल में खाना खा रहे थे, वो लैंड क्रूजर में निकले। भाई मतलब ये कि मौलवी साहब को तो ये नहीं करना चाहिए, मौलवी साहब की बेगम को भी मौलवन होना चाहिए, उनके बच्चे पैदाइशी मोमिन हो, उनके बच्चों को जिद नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मौलवी साहब है। ये गलत तसव्वुर है। आप कभी अल्लाह के नबी सल्लम की जिंदगी करीब से देखे, उनसे ज्यादा रोमांटिक और उनसे ज्यादा इजी गोइंग और रिलैक्स पर्सन नहीं दिखता। 9 घर थे और सारा दिन उम्मत के मसाइल हल करके घर आते थे तो मुस्कुराते हुए आते थे। हमारी तरह थोड़ा सा काम करके लोग बिजी डू नथिंग वाली कैफियत नहीं थी। तो अल्लाह के नबी को अगर आप पीछे डालकर अपनी मर्जी से कोई काम करेंगे ना तो वो दुरुस्त नहीं होगा। और बहुत सारों के ईमान सिर्फ इन चीज़ों से लूटे जा रहे हैं। कुरान की क्लासें कोई ज़रूरत ही नहीं, पढ़ने का फ़ायदा ही कोई नहीं, ये क्या फ़ायदा, ये किधर जा रहे हैं? आओ हम तुम्हें वजीफे बताते हैं, हम तुम्हें तरीके बताते हैं, हम तुम्हें बताते हैं ये सुनो। और जो सुनते हैं मैं कहती हूँ उसको सुन के बड़ा ही कोई ईमान वाला है कि फिर कुरान और सुन्नत वालों को बुरा ना कहे। मैं आपको सच बताऊं, मुझे किसी ने कुछ लिंक्स भेजे कि आप ये सुने, मैंने उसमें चीदा चीदा ऐसे ऐसे करके सिर्फ जिसको आप कहते हैं ना कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी के है क्या, 2-4। और टॉपिक क्या थे? वहाबीज्म, वहाबी कौन होते हैं, कुरान वाले कौन है, यानी टॉपिक वो जो कभी हमारी गुफ्तगू में आए ही नहीं। भाई हम वहाबी है ही नहीं तो अब हमारे बारे में ऐसी बातें क्यों कर। और मैंने उसका एक दो सुना तो मैंने कहा ये तो किसी को वो कहना चाहिए कि बदला लिया जा रहा है कि ये सुनो और कुरान सुन्नत वालों के खिलाफ हो जाओ। आप अगर ये सुनेंगी तो अभी तो आप खामोश हैं, आप 2 साल बाद देखिए कि गालियां देंगी कुरान सुन्नत वालों को। ये तो आपका बड़ा हौसला है कि अभी तक आप चुप हैं। ऐसे ऐसे प्रवोकिंग टॉपिक, पता नहीं क्या अजीबो गरीब, जो आपने आज तक 5 साल में इधर मेरी जुबान से ये मौजू सुने ही नहीं होंगे, वो कुरान सुन्नत वालों के खिलाफ लोगों को सुनाया। मैंने इस खौफ से नहीं सुने, कुछ सुने थोड़े बहुत, मैंने कहा बेकार है, जिस चीज का मुझे रिजल्ट पहले ही पता मैं अपना वक्त क्यों लगाऊं। तो मैंने नहीं सुने कि कहीं मैं बोलती हूं इधर उधर पढ़ाती हूं तो मुझे ना कोई बात कहीं याद आ जाए और मैं बोल दूं। तो इस फितनों के दौर में अगर आपको कोई बंदा कुरान और हदीस की बात कह दे ना, आप उसको पीछे कर दें, उसको कुछ नहीं आता, अनपढ़ जाहिल है, लेकिन देता तो आपको कुरान सुन्नत ही है ना। सीधी सी बात है, ना पीर का नाम, वली का नाम, ना मुर्शद का नाम, ना उस्ताद का नाम, ना इदारे का नाम, ना मसलक का नाम, ना गिरोह का नाम, ना जमात का नाम। क्या आपको कुरान सुन्नत पे शक है? हर आयत के पीछे तो नंबर लिखा होता है और हदीस पढ़ते हैं तो हदीस का लिखा है। एक बंदे की क्या औकात है इससे ज्यादा बोलने की? है किसी की जरूरत? कौन कहां से पढ़े, किस यूनिवर्सिटी से पढ़े, भाई ये पढ़ रहा है ये सुन लो आके। लेकिन आज हमारी उम्मत लोरियों में खो गई, वल्लाही आज उम्मत को वो ठकोसले दिए, अल्लाह ताला माफ करे हम दीन वालों ने, कि मैं कहती हूँ 100 सुन्नतें छोड़ देंगे, एक बिदत नहीं छोड़ेंगे। आप दर्स रखे, दर्स कैंसिल कर देंगे, वो अपनी बिदत नहीं छोड़ेंगे। टाइम नहीं है बच्चों के पास मरने वालों के बाद माँ बाप के लिए दुआए खैर कराने का, लेकिन उनके पास और कामों के लिए वक्त है। ये जो हालत है हम बर्दाश्त करते हैं इस चीज को? हमें पता है कि अभी इल्म आम नहीं हुआ, पढ़े लिखे जाहिल है हम आज। कहने को हम एक बड़े तरक्की याफ्ता दौर में और बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क में बैठे हुए हैं, लेकिन आप हमारी सोच देखें, वो 50 साल पीछे गांव के मौलवी की सोच है हमारी, और बेचारे उस मौलवी साहब को भी नहीं हम मिलते कभी। तो बहरहाल ये सारी बातें जो आपको बताई गई हैं इसका खुलासा क्या है कि अल्लाह की तरफ ध्यान को रखें। आपको इधर आते हुए 5 साल भी हो गए ना, अगर दुआ मांग के आया करें कि हदीना सिरात अल मुस्तकीम, कि अल्लाह पता नहीं अभी शायद हमें इनका ना ही पता चला हो, और आप में से किसी को डाउट है, कोई शक है तो मेरे सामने आके क्लियर कर लें। किसी को शक है ना हमारे बारे में तो उसको मेरे पास भेजें, मैं ज्यादा हकदार हूं कि मुझे बताया जाए कि हम क्या पढ़ा रहे हैं ताकि मैं गलत ना पढ़ाऊं। लेकिन दुआ मांगा करें कि अल्लाह ताला कोई दीन के नाम पे ना हमें लूटे, दुनिया के नाम पे तो धोखे खाए हुए हैं ना। कोई बात कहें? देखिए आपका जुमला मजाजी खुदा है, आपसे मैं भी पूछती हूँ, मजाजी खुदा, मजाज किसको कहते हैं आपको पता है? झूठ को। मजाज एक होता है रियल, और रियल जिसे आप मजाज का आसान पता है कि नकली, जैसे असली सोना होता है ना तो नकली ज्वेलरी होती है, तो आप कहते हैं कि वो उसकी जगह पे है। अल्लाह तो एक ही है, तो जो हिंदू बुत बना के पूछते हैं वो क्या है? वो मजाजी खुदा है, वो उनका मजाज है। इसी तरह कोई किसी बुजुर्ग के बारे में अगर ऐसे तसव्वुरात लेकर उसकी कब्र पे बैठता है तो वो उसका मजाज है। तो शौहर को मजाजी खुदा कहना ये गुनाह नहीं है, ये कुफर है, शिर्क है। क्या आप कहते हैं कि मेरा शौहर मजाजी खुदा? और पीछे से बात कहां से जाती है कि अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर किसी को सजदा करने का हुक्म होता तो मैं बीवियों को कहता कि शौहर को सजदा करें। ये बात सच है, लेकिन आपने कहा तो नहीं ना। ये देखिए ना समझी की बात है जी। आज क्या सीखा आपने? ठीक, ये बहुत अच्छी अमल की बात सोचिए कि एक रटी हुई नमाज है और एक शऊर वाली नमाज है। एक वीक करें अपने लिए, लिखे हो वक्त, एक हफ्ता आज से लेकर मैंने पांचों नमाजें इस फीलिंग के साथ पढ़नी है कि मैं अपने रब से बातें कर रही हूँ। करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह ताला। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।